Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे थे कि लक्ष्मी जी देखिए, सारी धरा पे भक्ति भावना कितनी बढ़ती जा रही है, लोग भगवान को अर्थात मुझे कितना याद कर रहे हैं, भक्ति की धारा बहती जा रही है। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, लोग आपको याद नहीं कर रहे हैं, लोग मुझे याद कर रहे हैं। लोग मेरे लिए यदि याद आपको करते भी हैं तो मेरे लिए याद करते हैं। तो प्रभु जी ने कहा, लेकिन वो लक्ष्मी लक्ष्मी तो कहते नहीं है, वो तो प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, इसकी भी परीक्षा हो जाए। तो प्रभु जी तैयार हो गए। अब प्रभु जी अपना वेश बदल के, ब्राह्मण का वेश धारण करके एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने दरवाजा खटखटाया, एक व्यक्ति निकले। तो प्रभु जी ने, जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपके गांव में हम भजन कीर्तन करना चाहते हैं, प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं, यदि आपकी इजाजत हो तो। उस यजमान ने कहा कि आप हमारे घर में ही रहिए जब तक आप भजन कीर्तन करते हैं, और मैं सारे गाँव के लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। अब सारे गाँव के लोग इकट्ठे हो गए, अब भजन कीर्तन शुरू हुए। अब चूंकि भगवान स्वयं ही सत्संग करा रहे थे तो संख्या बढ़ती गई, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन संख्या बढ़ती जा रही थी। अब लक्ष्मी जी को लगा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। लक्ष्मी जी ने एक वृद्धा का तन धारण किया और उसी गांव में पहुंचे। एक महिला सत्संग के लिए निकल ही रही थी तो वृद्धा उनके पास पहुंची और कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मुझे पानी पिला दो। उस महिला ने कहा कि नहीं, मैं सत्संग के लिए जा रही हूँ, देर हो रही है, मुझे अभी जाने दीजिए, आप किसी और घर में देख लीजिए। लेकिन वृद्धा ने बहुत ज़्यादा उनसे याचना की तो वो घर के अंदर गई, एक लोटा पानी लेके आई, पानी पिलाया उनको। और जैसे ही लोटा वापस किया तो सामान्य सा जो तांबे का लोटा था वो अब सोने का लोटा बन गया था। ये देखते ही वो महिला बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें लगा कि यदि ये खाना खाती तो मेरी थाली, मेरी कटोरी, मेरी चम्मच जो भी है वो सब भी सोने का हो जाता। तो उन्होंने आग्रह किया कि क्या मैं आपके लिए भोजन भी परोस दूं? तो लक्ष्मी जी जो थी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको सत्संग में देरी हो रही है, आप जाइए सत्संग करके आइए। अब महिला सत्संग में पहुंच तो गई, लेकिन उनका मन वहां उस बात में नहीं लग रहा था, सत्संग में नहीं लग रहा था। आसपास जो महिलाएं बैठी हुई थी उनसे भी उसने चर्चा करनी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे महिलाओं को ये बात पता चली, वो वही बीच सत्संग से उठ करके जाने लगे। और साथ ही साथ थोड़े समय के बाद बहुत सारे लोग चले गए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अब संख्या लोगों की कम होती चली गई। अब लोगों ने पूछा कि बात क्या है, सत्संग में अब लोग कम क्यों आने लगे हैं? तो किसी ने बताया कि एक बहुत ही चमत्कारिक वृद्धा आई हुई है यहाँ पे, वो जिसके भी थाली में खाना खा लेती हैं, जिसके लोटे में पानी पी लेती हैं, वो लोटा और वो जो थाली है वो सब सोने का हो जाता है। अब ये यजमान जो थे, जिनके घर में भगवान जी ठहरे हुए थे, उसने भी ये बात सुनी। अब वो भी सत्संग से उठ करके चल पड़े अपने घर की ओर। और जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ही, गाँव में ही, लक्ष्मी जो थे, जो वृद्धा का रूप धारण किए हुए थे, उनसे कहा कि आप सबके घर में गई हैं, आप मेरे घर में नहीं आई, मैं तो भगवान का कीर्तन करा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारे घर में तो ऑलरेडी एक यजमान ठहरे हुए हैं, एक ब्राह्मण ठहरे हुए हैं, अब मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक मैं कैसे आऊँगी? तो यजमान ने कहा कि ठीक है, आज ही मैं व्यवस्था कर देता हूँ, उनको चलता करता हूँ और आप मेरे घर में पधारिए। अब जैसे ही ब्राह्मण जो भगवान थे, ब्राह्मण रूप धारण किए हुए, जब वो वहाँ पहुँचे यजमान के यहाँ, तो यजमान ने कहा कि ऐसा है कि अब आपकी व्यवस्था मैंने धर्मशाला में कर दी है, आप वहाँ ठहरिए, यहाँ मैं दूसरे मेहमान को ठहराना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि अभी तो दो तीन दिन रहे हुए हैं, आप मुझे पूरी कथा करने दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं धर्मशाला में ही आपकी व्यवस्था की हुई है, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। और ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको वहाँ जाने के लिए कहने लगे। वो जो वृद्धा थी वो भी आ चुकी थी वहाँ पर। उन्होंने कहा कि ऐसा है यजमान जी, आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। अब लक्ष्मी जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई प्रभु के सामने और कहा कि देखिए, मेरी जो पहचान है और मेरी जो वैल्यू है वो कलयुग में ज़्यादा है, जब मैं आती हूँ तो आपको लोग याद नहीं करते हैं। तो प्रभु जी ने कहा कि बात तो ठीक है लक्ष्मी, लेकिन एक बात तुमने भी ये बात देखी होगी कि जहाँ प्रभु की चर्चा होती है वहीं तुम्हारा आगमन होता है, इस बात से भी तुम इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, अब तो मैं चलता हूँ अपने धाम की ओर, तुम यहाँ पे रहो। अब प्रभु अपने धाम की ओर चले गए और दूसरे दिन सारे लोग इकट्ठे हो गए, गांव के लोग उस यजमान के पास, कि अब हर दिन एक दिन हमारे यहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, अब हम सभी अपने अपने घर में लेके चलेंगे इनको। लेकिन लक्ष्मी जी भी वहां से अंतर्ध्यान होने लगी, ये कहते हुए कि जहाँ प्रभु रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। यदि उनकी याद नहीं है, उनका वास नहीं है, तो मैं भी वहां पे नहीं रहूंगी। ये कहते हुए वो भी अंतर ध्यान हो गई। तो मित्रों, जहां प्रभु की याद है, जहां उनकी स्तुति है, जहां उनका सत्संग है, वहां पे ही लक्ष्मी का वास होता है। यदि हम केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, माया के पीछे भागते हैं, तो ना तो राम मिलते हैं और ना ही माया मिलती है। इसीलिए इस चीज को हम बहुत गहराई से अपने जीवन में भी शामिल करते चलें कि हम प्रभु की स्तुति, उनकी याद को प्रथम स्थान दें, स्वतः ही लक्ष्मी, धन, वैभव हमारे घर में आते चले जाएंगे। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू।
लोग लक्ष्मी के पीछे आज ज्यादा भाग रहे हैं भ्राता जी, प्रभु की चर्चा थोड़ी कम होती है, इसलिए शायद लक्ष्मी जी सुख नहीं दे रही हैं लोगों को।
हाँ, क्योंकि अगर लक्ष्मी बहुत हो जाए लेकिन मन शुद्ध न हो, तो लक्ष्मी का प्रयोग मनुष्य पाप कर्मों में करने लगता है, व्यसनों में करने लगता है, इसलिए फिर उसे सुख नहीं मिलता है।
जी, जी।
इसलिए चित्त को शुद्ध कर देना चाहिए और पहली स्मृति उसकी जो हमारा परम पिता है, उससे यदि हमारा नाता होगा तो जैसे कहानी में है, जहाँ प्रभु होंगे वहाँ लक्ष्मी आ ही जाएगी और वो लक्ष्मी तब बड़ी सुखदाई होगी।
बिल्कुल। तो प्रभु की जो चर्चा है, उनकी याद है, उसका स्वरूप क्या रखा जाए भ्राता जी, जिससे सहज ही लक्ष्मी हमारे पीछे पीछे हमारे घर में भी वास करे और हमारे पीछे चलती रहे।
देखिए, आजकल तो भक्ति में क्या हो गया है कि भगवान के नाम पर बहुत तरह की पूजा पाठ होने लगी और पूजा पाठ भी एक स्वार्थवश होने लगी, सकामी भक्ति इसको कहते हैं। भक्ति में न पवित्रता रही, न शुद्धि रही, न निष्काम भाव रहा है, इसलिए भक्ति का स्वरूप भी दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, भक्ति से थोड़ा बहुत फल तो मनुष्य को मिलता ही है, लेकिन यदि एक परमात्मा से प्यार किया जाए, यदि निष्काम भाव से उसकी ओर बढ़ा जाए, तो ये सच्चे अर्थों में परमात्म प्यार होता है, इसको भक्ति कह दीजिए। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक भक्त, एक विभक्त। इसके विपरीत, विभक्त का अर्थ है अलग होना और भक्त का अर्थ है जुड़े रहना। तो वास्तव में जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं वही सच्चे भक्त हैं, जो निष्काम भाव से उसके प्रेम में मग्न हैं वही सच्चे भक्त हैं, और जो किसी कामना की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, कामना पूर्ण होते ही वो भगवान को जानते नहीं, फिर उसकी ओर देखते नहीं है, तो वास्तव में वो सच्चे भक्त नहीं है। इसलिए एक परमात्मा से ही सच्चा नाता रखने से हम सच्चे अर्थों में भक्त कहला सकते हैं।
लेकिन भक्ति मार्ग में यदि देखा जाए भ्राता जी, यद्यपि मैंने शुरुआत जिस कथा से की है, उसका सार और भाव तो यही था कि परमात्मा की याद से सहज सर्व प्राप्तियां सांसारिक होती जाती हैं, लेकिन यदि भक्ति काल पे एक नजर हम डालें तो जितने भी भक्त थे उन्हें धन संपन्न नहीं देखा गया है, वो दरिद्रता में देखे गए हैं, अभावों में देखे गए हैं, परिस्थितियों से जूझते हुए देखे गए हैं, ऐसा क्यों रहा?
दो कारण है। एक तो भक्ति की ओर वही मनुष्य बढ़ता है जो निर्धन होता है, जो बहुत धनवान है उसे भक्ति आदि की जरूरत नहीं होती, और फिर अगर कोई धनवान भक्ति की ओर बढ़ जाता है, जैसे नरसिंह मेहता बहुत धनवान थे और भक्ति के मार्ग पे चल पड़े, प्रभु प्रेम में मग्न हो गए, तो वो फिर इस धन संपदा को बिल्कुल नीरस, तुच्छ, मिट्टी के समान समझने लगता है। एक कहानी है नरसिंह मेहता की, बहुत अच्छी। पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे संन्यास लेने के बाद, पत्नी थोड़ी पीछे थी, नरसिंह आगे थे, तो देखा एक सोने का टुकड़ा पड़ा है, तो रुक कर उस पर मिट्टी डालने लगे। इतने में पत्नी आ गई, कहा क्या कर रहे हो? कि ये सोने का टुकड़ा पड़ा है, मैं सोचा नारी का नेचुरल स्वभाव सोने की तरफ ज्यादा होता है आकर्षण, तुम इसे आकर्षित न हो जाओ, इसलिए मैं इस पर मिट्टी डाल रहा था, तुम्हें दिखाई न दे। उन्होंने कहा तुम्हें तो सोना भी दिख रहा, मेरे लिए तो यही मिट्टी है, इस पर मिट्टी न डालो तुम, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो सच यही है कि कोई मनुष्य अगर भक्ति की ओर बहुत तीव्र गति से चलता है तो वो फिर इस सब चीज पे ध्यान नहीं देता है, धन संपदा उसे मिट्टी के समान लगने लगती है, और यही कारण है कि सभी भक्त लोग निर्धन देखे गए। लेकिन राजयोग इससे अलग हटकर चीज है। राजयोग हमें ये नहीं सिखाता कि तुम इस धन संपदा की ओर देखो नहीं, तुम गरीबी में ही बने रहो, पर राजयोग हमें सिखाता है कि सब कुछ होते हुए भी तुम उनमें अनासक्त भाव धारण करो।
तो ये बैलेंस स्थापित मतलब राजयोग कर देता है, जहां भक्ति में लगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजयोग शायद एक बैलेंस स्थापित कर देता है कि इनकी भी आवश्यकता है और इन्हें साथ लेके चलना।
राजयोग में क्या है कि छोड़ना है बुराइयों को, छोड़ना है मनोविकारों को, छोड़ना है उन चीजों को जो दूषित कर रही हैं हमारे मन को, न खान पान को छोड़ना है लेकिन छोड़ना है तामसिक खान पान को, न घर बार को छोड़ना है लेकिन घर बार में जो मनुष्य फंसा हुआ है आसक्त है उसको अनासक्त वृत्ति बनानी है, जिसको कहते हैं बाबा प्रवृत्ति में रहते भी निवर्त तुम रह सकते हो। बाकी धन की आवश्यकता है, देखिए महंगाई का जमाना, आज केवल भोजन के लिए मनुष्य को काफी अच्छा धन रोज खर्च करना पड़ता है, जी, जी। बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाई महंगी है, अभी ये तो नहीं कह सकते राजयोग के बाद के भाई बच्चों पे ध्यान ना दो, जिम्मेदारी पूरी निभानी है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अच्छे धन की जरूरत है, बीमारियां भी होती रहती हैं, मेडिकल भी बहुत महंगा है, दवाइयां महंगी, उपचार पूरा ही महंगा है, मकान ले लीजिए वो भी महंगा है, इसलिए राजयोग ये नहीं सिखाता कि तुम कर्म ना करो, जिम्मेदारी न निभाओ या अपने बिजनेस को न बढ़ाओ या नौकरियों में प्रमोशन न लो, सब कुछ अच्छी तरह लो लेकिन कहीं भी आसक्त ना हो, इसको ही इसलिए राजयोग को अनासक्त कर्मयोग भी कह दिया गया है।
और भक्ति मार्ग की इन स्थितियों को देख के ही शायद लोग भक्ति से या भगवान से या धर्म से डरने लगे कि यदि हम उस ओर बढ़ेंगे तो शायद संसार की ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी और हमें भी ऐसा ही दरिद्र जीवन जीना पड़ेगा, शायद इस चीज को समझने की थोड़ी
ऐसा
सी आवश्यकता
है। ऐसा कई लोग मानने लगे, ये मानने लगे कि धन संपदा बहुत होगी तो उसकी मोह माया में फंस कर मनुष्य भगवान से दूर हो जाएगा, इसलिए धन संपत्ति की कामना ही ना करो, भगवान से वो चीज ना मांगो, तुम उसे प्रेम मांगो, भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, वैराग्य मांगो। लेकिन अब शिव बाबा ने आकर जब ज्ञान योग सिखाया तो एक सुंदर बैलेंस सिखाया है कि नहीं, जो चीजें जीवन में आवश्यक हैं वो तो चाहिए। अभी मान लो एक सन्यासी है और वो भीख मांग कर खा रहा है, उसे भी लगता है कि बीमार हो गया, ज्यादा बीमारी हो गई, कहीं पैसा चाहता अवश्य है, उसे भी लगता है कि उसे तीर्थ यात्रा करने कहीं जाना है, दूर दूर जाना है, उसके लिए पैसा चाहिए उसको, तो इन सब चीजों की आवश्यकता तो है, इसको नगण्य तो नहीं माना जा सकता, इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, इसलिए बाबा ने हमें अनासक्त वृत्ति दी है कि अच्छी तरह कमाओ, अच्छी तरह अपने कार्य करो, अपने धंधों को बढ़ाओ, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ, लेकिन अनासक्त भाव धारण कर लो।
बिल्कुल बिल्कुल प्रति जी, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी भगवान की प्रतिज्ञा पे कि तुम मेरे रास्ते पे पैर रख करके तो देखो, मैं तुम्हारे रास्ते को हरा भरा कर दूंगा, तुम मेरे मार्ग में आओ तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ये प्रतिज्ञा करता हूँ। तो जिनकी बात आपने की, साधु संतों महात्माओं की, उन्होंने भगवान के मार्ग पे अपने आप को न्यौछावर कर दिया, समर्पण कर दिया, अब उनकी मार्ग में आ गए तो क्या भगवान उनके लिए जिम्मेवार नहीं हो गए कि यदि वो बीमार होते हैं तो उनकी व्यवस्था वो कर दें, यदि उनको और किसी चीज की जरूरत है तो व्यवस्था वो कर दें? उस संत को अब सोचने की क्या आवश्यकता है कि मैं यदि बीमार हो गया तो मुझे धन की जरूरत है?
अगर सचमुच वो सच्चा संत बन गया है, अगर उसने अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, एक के सिवाय उसके ध्यान में और कुछ नहीं आता है, तो परमात्मा उसकी पूरी केयर करेगा ही। लेकिन अगर वो अपनी इच्छाओं में बंधा हुआ है, अगर उसको और कुछ कामनाएं संसार की हैं, अगर वो औरों की तरफ भी देखता है, मैं उदाहरण ले लीजिए, एक व्यक्ति ने संन्यास धारण कर लिया, फिर उसको इच्छा हुई एक बड़ा आश्रम बनाऊं, फिर मेरे बहुत सारे शिष्य हों, मेरा नाम बहुत हो जाए, मैं ऐसा ऐसा करूं, ये बना लूं, तो उसकी बुद्धि परमात्मा से हट कर साधनों में लग गई, मानसान की इच्छा में लग गई, तो फिर उसको संपूर्ण समर्पण नहीं कहा जा सकता। यानी उसमें और गृहस्थी में कहीं कहीं लगता है कि अंतर नहीं रह गया है, तो ऐसे व्यक्ति की केयर भगवान फिर नहीं करता है। लेकिन जिनका कोई नहीं है, जो पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं, उनकी केयर भगवान अवश्य करता
है। लेकिन ऐसे भक्त तो फिर बिल्कुल विरले ही होंगे, कलयुग में कोई होंगे, कलयुग में तो ऐसा लगता है कि कहीं भी मेरा ध्यान ना जाए, कहीं भी मेरी आसक्ति ना हो, सब चीजें मैं एक झटके से छोड़ दूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी संभावना है कलयुग।
बिल्कुल ऐसे भक्त जो पहले हुए हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर जब महाराष्ट्र में थे तो एक नाथ, निवर्ती नाथ, कई नाथ हुए, उनके लिए ये प्रसिद्ध है कि उन्हें अपने लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता था। जैसे भगवान इंतजार करता था कि कब ये मेरे से कुछ मांगे और मैं इन्हें प्रदान करूं। नरसिंह मेहता की ले लीजिए, इतना उमग्न हो गया था उसके प्यार में कि उसके सारे कार्य भगवान को करने पड़े। तो ऐसे भक्त यदि सचमुच कोई बनते हैं तो उनकी केयर जरूर ऊपर से होती है, परंतु ये सत्य है कि कलयुग के अंत में भक्ति भी थोड़ी नीचे उतर आई है। गुरुओं की पूजा होने लगी, मनुष्यों की पूजा होने लगी, भूत प्रेतों की पूजा होने लगी, तो भक्ति में भी वो शक्ति नहीं रही जो उसके सतोप्रधान स्वरूप में थी। इसलिए परमात्म सहयोग उस तरह का भक्तों को प्राप्त नहीं होता,
नहीं
है।
हो पाता है। मतलब एक अच्छी भावना से वैसे शुरुआत करते हैं, लेकिन शायद बाद में ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एक चीज नहीं लगता रहता जी कि यदि उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी तो भी उनकी तरफ से वो मदद तो उन्हें प्राप्त होनी
चाहिए। मदद तो मिलती ही रहती है, इसलिए बहुत लोग उनको मदद करते हैं। साधु संत जहाँ भी जाएगा
जी,
हॉस्पिटल में ही जाता है तो कोई उसे पैसा तो मांगता भी नहीं है। हमारे भी हॉस्पिटल हैं, सबका इलाज फ्री होता है। फिर भी मान लो उसे कोई बड़ी व्याधि आ गई और कहीं बहुत पैसे की जरूरत पड़ने लगी, ऐसी कुछ चीजें हैं कि कई डॉक्टर्स लोग उसमें फ्री ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन एक जो उच्च कोटि के सन्यासी हैं वो इस तरह किसी के पास नहीं जाया करते कि हमारा फ्री इलाज करा लो। लेकिन जो उच्च कोटि के ऐसे संत महात्मा होते हैं उनके पास लोग स्वतः ही चले जाते हैं उनको मदद करने के लिए।
जी 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 जी। और ऐसी भी संभावना है कि उन्हें ऐसी कोई तकलीफ होती भी ना हो, क्योंकि वो प्रभु की याद में मग्न रहते हैं। और एक विशेष बात है जी इस संदर्भ में, जैसे ये बात आपने कही कि जो ब्राजयोग का विशेष अभ्यास जो परमात्मा की याद से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो परमात्मा की याद में रहते हैं, जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो क्या यहाँ लक्ष्मी उनके पीछे पीछे आने लगती है? यहाँ किसी प्रकार के धन का अभाव नहीं रहता, उनका जीवन पूरी हरियाली हरियाली से भरपूर हो जाता है, या फिर यहाँ पे भी ऐसा रहता है कि राजयोग तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हमें कुछ कर्म क्षेत्र में भी करना है?
दोनों तरह के लोग हैं। एक हमारे पास प्रकार है जिसमें लोगों ने अपना जीवन परमात्मा के कार्य में समर्पित कर दिया है
जी।
उनके लिए ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसको हम महान यज्ञ कहते हैं, ये जिम्मेदार रहता है। उनके लिए सब सुविधाएं बनी हुई हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, जो भी उन्हें दिक्कत होती है उसको पूर्ण किया जाता है। लेकिन दूसरे लोग वो हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, जिनको अपनी कमाई करनी, अपने बच्चों की पालना करनी, तो वो स्वतः ही अपना सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको भी परमात्मा मदद का बहुत ज्यादा अनुभव होता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव उन सब लोगों के पास हैं जो गृहस्थ में रहते ईश्वरीय मार्ग पे चल रहे हैं। बाकी हम सब ये देखते हैं और हम कह सकते हैं कि जहाँ धर्म का कार्य होता, जहाँ निष्काम भाव से मनुष्यों की सेवा की जाती हो, वहाँ धन का कभी भी अभाव रहता नहीं है। क्योंकि संसार में अनेक लोग इस चीज को देखते हैं कि ये लोग निष्काम भाव से जन सेवा का कार्य कर रहे हैं, दूसरों को मदद करने का कार्य कर रहे हैं, तो अनेक लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
बिल्कुल, विद्यालय स्तर पे तो जहाँ पे समर्पित हैं इस प्रकार के बहुत सारे जो लोग हैं, मदद अवश्य करते होंगे। लेकिन ऐसे लोग रहते हैं जिनकी बात गृहस्थ में है, वो बहुत दरिद्र थे पहले, अब वो परमात्मा के मार्ग में आए, उन्होंने राज्यों का अभ्यास किया, तो क्या कुछ ऐसे अनुभव हैं कि बहुत दरिद्र थे और अब धन्ना सेठ बन गए हों?
ऐसे तो अनुभव मैं समझता हूँ लाख तो होंगे। जो बहुत दरिद्र तो हम नहीं कहेंगे, पर जो मतलब मुश्किल से अपना गुजारा करते थे बेचारे
जी,
जिनको परिवार था लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाते थे, और उन्होंने ईश्वरीय कार्यों में सहयोग देना प्रारंभ किया, तन मन धन लगाना शुरू किया, और जैसे ही धन लगाया तो उनके धन में वृद्धि होती गई। ऐसा मैं नहीं समझता एक भी केस होगा कि लाखों में से कि जिसने धन ईश्वरीय कार्यों में लगाया हो और उसको यहीं बहुत धन प्राप्त न हो गया हो, या उसको कहीं धन का अभाव रहा हो, ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं है। तो ये बिल्कुल देखने में आता है तो जो ईश्वरीय कार्य धन से करते हैं, धन लक्ष्मी उनके पीछे पीछे भी आती है,
आने लगती है। मतलब जो लोग ऐसे हैं जो निर्धन हैं, जिनके पास धन का थोड़ा अभाव है, वो भी ईश्वरीय मार्ग में आके और ईश्वरीय कार्य में सहयोग देके अपने जीवन को खुशहाल और साथ ही धन दाने से संपन्न कर सकते हैं, ऐसा
कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ आने वाले सबको ऐसा लगता है कि ये बड़े साहूकार लोग यहाँ आते हैं, थोड़ा खान पान अच्छा हो जाता है क्योंकि जो व्यर्थ खर्च हो रहा था वो समाप्त हो जाता है। एक्चुअल तो गरीबी इसलिए है के लोग शराब पीते हैं, शादियों पे बहुत खर्च कर देते हैं तो कर्ज से डूब जाते हैं, फिर उनके बच्चों को ठीक ठाक पढ़ाते नहीं क्योंकि धन जो है दूसरी तरह व्यय होता है। यहाँ आके उनका लाइफ स्टाइल सुंदर हो जाता है, ये बुरी आदतें छूट जाती हैं, न वो सिनेमा में जाते जहाँ खर्च हो, न वो शराब पीते जहाँ खर्च हो, अगर शादी बच्चों को करानी है तो बहुत सिंपली करा देते हैं, तो इसलिए उनका वैसे ही जो निर्धनता है वो समाप्त हो जाती है। और जैसा मैंने कहा कि अगर वो धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो धन की वृद्धि, बिल्कुल ये नियम ही है, धन की वृद्धि होने लगती है।
बिल्कुल, मतलब व्यर्थ का व्यय भी खत्म हो जाता है और साथ ही धन की वृद्धि भी योग के माध्यम से होनी शुरू हो जाती है। चलिए भ्राता जी, हम सभी से कामना करेंगे कि वो भी राजयोग का सुंदर अभ्यास करके अपनी निर्धनता को दूर करें।
कर सकते हैं।
जी जी जी, और ये तो बहुत छोटी सी चीज लगती है, मुझे लगता है जो आप हमेशा कहते हैं कि भगवान का मिलन हो जाना, उसके बाद तो कोई निर्धन रहता ही नहीं शायद मेरे विचार से।
बिल्कुल।
प्रताप जी, एक मेल की ओर लिए चलता हूँ आपको, ये हमें अभिजीत ने भेजा है और ये कहते हैं, भाई साहब मेरा एक प्रश्न है, बाबा कहते हैं कि अंतिम समय में 8 प्रकार के पेपर आने वाले हैं हर एक ब्राह्मण के सामने, मैं जानना चाहता हूँ कि ये 8 प्रकार के पेपर कौन से हैं। ये मैंने भी पहली बार सुना है प्रताप जी कि 8 प्रकार के पेपर आने वाले
हर व्यक्ति के पास इस परिवर्तन की वेला में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे। देखिए पेपर कैसे होते हैं, हम एक स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास एक सुंदर एजुकेशन है तो हमें उसका एग्जाम तो देना ही पड़ता है। शारीरिक बीमारियां आ गई
जी,
ये एक पेपर होता है कि मनुष्य शरीर में तो बीमारी आ गई लेकिन कहीं मन को बीमार तो नहीं कर बैठा, कहीं वो परेशान तो नहीं हो गया, कहीं शरीर में दुख कम है लेकिन मन में पीड़ा ज्यादा तो नहीं हो गई। इसको पास करने का अर्थ है कि शरीर की बीमारी हो सहज भाव से पार कर लेना, अपनी मनोस्थिति को नहीं बिगाड़ना। बिजनेस धंधों में परीक्षाएं आ जाती हैं, अचानक खेल बिगड़ने लगता है, संबंधों में का पेपर आ जाता है, अपने पराये होने लगते हैं, प्रकृति की ओर से पेपर आने लगते हैं जैसा अभी नेपाल में आया, ऐसे बहुत सारे विघ्न मनुष्य के सामने आते हैं। कई पेपर आते हैं मनुष्य के अपने संस्कारों के कारण, उसके कुछ ऐसे संस्कार जो उसे ही परेशान कर देते हैं। मान लो छोटा सा उदाहरण मैं दूं, किसी में संस्कार आ गया सुस्ती का, अब वो अमृत वेले नहीं उठते, अब वो ईश्वरीय ज्ञान सुनने नहीं जाते, ढीले होते जा रहे, रोज प्रतिज्ञा करते हम तो उठेंगे, उठते नहीं है, तो ये उसके सामने बहुत बड़ा पेपर आ गया। ऐसे ही काम वासना के पेपर, क्रोध के पेपर, अहंकार के पेपर, मोह ममता के पेपर, किसी नजदीकी संबंधी की मृत्यु हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये सब पेपर बहुत आएंगे। लेकिन अंत में विशेष रूप से प्रकृति के पेपर और विकारों के पेपर बहुत ज्यादा आएंगे, मानसिक रूप से भी बहुत सारे पेपर मनुष्य के पास आएंगे। तो 8 क्या, उसके प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें पास वही होगा, क्लियरली इनको फेस करते हुए वही आगे बढ़ेगा जिसने योग का बल अपने में भरा होगा, जिसने साक्षी भाव धारण किया होगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। वैसे विषय तो बड़ा सा है, मुझे लगता है कि हर एक पेपर में कैसे हम संपूर्ण रूप से फुल मार्क्स लें, इस पे फिर कभी आपसे प्रकाश लेंगे। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जैसे हम जीवन में अलग अलग परीक्षाओं को पास करते हैं, परीक्षाएं तो आती ही हैं जीवन में, चाहे आप कहीं पे भी रहें, विद्यार्थी हैं वो भी प्रतिवर्ष परीक्षा देते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरे वर्ष अच्छी तैयारी की जाए और अच्छी तैयारी करने के बाद जो पेपर आता है अच्छे से क्लियर किया जाए, अच्छे मार्क्स लिए जाएं। जीवन रूपी परीक्षा में भी यदि हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं, जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि योग को बढ़ाया जाए, ईश्वर को साथ रखा जाए, और ये वाली बात मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ईश्वर को साथ रखा जाए। क्योंकि जैसे महाभारत के युद्ध में भी आपने देखा होगा, अक्षौणी सेना थी सामने, लेकिन इनके पास, पांडवों के पास केवल भगवान ही तो थे ना, और भगवान के होने के कारण इन्होंने युद्ध को जीत लिया। तो हमारे सामने में भी कैसे भी पेपर आए, कैसे भी बड़े से बड़ा युद्ध हो, यदि भगवान का साथ होगा निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, और भगवान के साथ से ही शुरुआत हमारी हुई थी, यदि उनका साथ रहेगा लक्ष्मी भी हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है मित्रों कि हम अपने जीवन में परमात्मा को शामिल करें, उनके अंग संग रहें, तो न केवल लक्ष्मी लेकिन जीवन में तमाम प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं, समस्याएं हैं जो आती हैं, वो भी हमारे लिए खेल बन जाएंगे। तो आज से हम यही प्रेरणा लेते हैं, यही संकल्प लेते हैं कि जीवन में जितना ज्यादा से ज्यादा हो हम उनकी मधुर याद में खोए रहेंगे, उन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे ताकि जीवन सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन ऐसी ही खुशहाली से भरा रहे। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।